بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندے منش بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیف نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज गुरुवार है, इस फंद की 17, शाबान की 26 और मार्च की 7 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। जबकि ताजा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरान शताब्दी के झरोखे में। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहंदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि ईरान का तर्क वर्चस्ववादी मोर्चे के मुकाबले में डट जाना है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का ऊंचा मस्तक और सम्मान का प्रतीक है। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,800 से अधिक हो गई। चीन ने बाइडेन पर कई आरोप लगाए और बाइडेन प्रशासन की आलोचना की। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। आज गुरुवार को सर्वोच्च नेतृत्व का चयन करने वाली परिषद के अध्यक्ष और उसके सदस्यों ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामनेई से मुलाकात की। इस मुलाकात में सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस्लामी लोकतंत्र के गठन से पहले दुनिया में केवल पश्चिम की लिबरल डेमोक्रेसी से संबंधित डेमोक्रेसी मोर्चा मौजूद था, परंतु इस्लामी क्रांति के सफल हो जाने के बाद इस्लामी लोकतंत्र पर आधारित नए मोर्चे का गठन हुआ जो स्वाभाविक रूप से पश्चिमी डेमोक्रेसी के मुकाबले में है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि ईरान में धार्मिक लोकतंत्र का सत्ता में आना पश्चिमी डेमोक्रेसी के हित के खतरे में पड़ने का कारण बना है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि उनके खतरा आभास करने का कारण यह था कि पश्चिमी डेमोक्रेसी के अस्तित्व जात में साम्राज्यवाद, अतिक्रमण और राष्ट्रों के अधिकारों पर अत्याचार, जंग, सीमा रहित रक्तपात और सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधों को बहुत से एशियाई व अफ्रीकी और 19वीं शताब्दी में लैटिन अमेरिकी देशों में देखा जा सकता है। ईरान की इस्लामी व्यवस्था क्यों वर्चस्ववादी शक्तियों का विरोधी है? इस सवाल के जवाब में सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस्लामी ईरान दूसरे देशों, सरकारों और राष्ट्रों का अकारण विरोधी नहीं है, बल्कि वो अत्याचार व अतिक्रमण का विरोधी है और वो जिस मोर्चे का विरोधी है उसके अंदर पश्चिमी डेमोक्रेसी मौजूद है।
सर्वोच्च नेता ने गजा पट्टी की दुखदायी व हृदय विदारक घटनाओं को अत्याचारी मोर्चे के अत्याचार का स्पष्ट नमूना बताया और कहा, इस्लामी गणतंत्र ईरान द्वारा विरोध वास्तव में इस प्रकार के अत्याचार व अपराध का विरोध है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश इन अपराधों व अत्याचारों का समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च नेता ने कहा कि ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि साम्राज्यवादी मोर्चा अत्याचार, अतिक्रमण और हत्या को डेमोक्रेसी, मानवाधिकार और लिबरलिज्म के नाम के नीचे छिपा रखा है। ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान हमेशा साम्राज्यवाद से मुकाबले में अग्रणी रहा है और साम्राज्य से मुकाबले के ध्वज को हर रोज अधिक से अधिक विस्तृत होना चाहिए और किसी भी समय इस्लामी गणतंत्र ईरान से इस ध्वज को ले लिए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फारस की खाड़ी में ईरान ने अमेरिकी तेल ले जाने वाले एक टैंकर को अब आधिकारिक रूप से जब्त कर लिया है। अमेरिकी तेल कार्गो फारस की खाड़ी में मार्शल आइलैंड्स फ्लैग वाले जहाज एडवांटेज स्वीट द्वारा ढोया जा रहा था। अप्रैल 2023 में एक ईरानी बोट से टकराने के बाद ईरान ने इस तेल टैंकर को रोक लिया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस तेल कार्गो को ईरान की एक अदालत के आदेश के बाद जब्त किया गया है। एक दुर्लभ त्वचा रोग से पीड़ित रोगियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा उपचार में होने वाली समस्याओं को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी शिकायत में ईवी रोगियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की थी। शिकायत में रोगियों ने कहा था कि पश्चिमी प्रतिबंधों, विशेष रूप से अमेरिका के गैर कानूनी और एक पक्षीय प्रतिबंधों ने स्वदेश कंपनी द्वारा ईरान को दवाएं बेचने से रोक दिया है, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंच रहा है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख का कहना है कि गजा में पीड़ित फिलिस्तीनियों और विस्थापितों की मदद के लिए ईरान द्वारा भेजी गई 10,000 टन खाद्य सामग्री और दवाइयों में से केवल 25% को ही गजा में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख पीर हुसैन कुलीवंद ने बुधवार को कहा कि जानवी शासन गजा में पीड़ितों तक मानवीय सहायता के मार्ग में रुकावटें डाल रहा है। उन्होंने कहा कि वो सहायता को भी दंडात्मक कार्रवाई के रूप में उपयोग कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने अवैध जानवी शासन के 90 अपराधों की सूचीबद्ध किया है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अदालत को एक पत्र लिखा है। गौरतलब है कि गजा में युद्ध अपराधों और नरसंहार सहित 90 अपराधों के शिकायत पत्र पर अब तक 86 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख ने गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के नरसंहार और मानवीय अधिकारों के हनन के विषय पर तेहरान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा भी की। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज गुरुवार को ऐलान किया कि गत 24 घंटों के दौरान जानवी सेना के हमलों में 83 फिलिस्तीनी शहीद और 182 घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार 7 अक्टूबर से आरंभ होने वाले इसराइल के बर्बर व पाश्विक हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,800 हो गई है, जबकि 72,298 लोग घायल हुए हैं। इसी प्रकार गजा पट्टी में 7,000 से अधिक लोग लापता और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देश, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन, खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण वो किसी प्रकार के संकोच के बिना फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों का नरसंहार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के नाम अपने एक बयान में कहा है कि गजा में नए तथ्यों, विशेष रूप से व्यापक कुपोषण और भुखमरी के कारण वो एक बार फिर इसराइल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि इसराइल नरसंहार की रोकथाम वाले कन्वेंशन का निरंतर उल्लंघन कर रहा है, जिससे जिसके कारण वो एक बार फिर अदालत का रुख करने के लिए मजबूर है। कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत ने गजा युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका की नई अपील किए जाने का लिए उसका आभार व्यक्त किया। चिली सरकार ने लैटिन अमेरिका के मुख्य एयरस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी से जानवी शासन की कंपनियों को हटाने की घोषणा की है। जानवी कंपनियों को इस प्रदर्शन से बाहर करने का मतलब इसराइल और उसके समर्थकों विशेष रूप से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पट्टी पर जानवी सेना के हमलों में अब तक 30,800 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस सभा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और विपक्ष पर निशाना साधा। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं। उन्होंने कहा कि आपका दिल मैं जीत पाया हूं, इसकी कोशिश आगे और जारी है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय पहले जम्मू आया था, वहां मैंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही इतने कम अंतराल के बीच ही आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। चीन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वाशिंगटन बीजिंग पर दबाव बनाना चाहता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि रिश्तों में सुधार के बावजूद अमेरिका उस पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। चीन का कहना है कि संबंधों में सुधार के बावजूद अमेरिका उसे दबाना चाह रहा है। चीनी विदेश मंत्री ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर चीन के उभार को रोकने की रणनीति तैयार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका द्वारा चीन की और कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के लिए बाइडेन प्रशासन की आलोचना की। चीन की विधायिका की वार्षिक बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए वांग यी ने कहा कि नवंबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद से अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा कहता कुछ है और करता कुछ। उन्होंने कहा कि अगर चीन का नाम सुनते ही अमेरिका घबरा जाता है और चिंतित हो जाता है तो एक महाशक्ति के रूप में उसका विश्वास कहाँ है। वांग ने कहा कि अगर अमेरिका चीन को दबाने पर तुला है तो अंततः उसे ही नुकसान होगा। भारत ने मालदीव के पास अपना एक नौ सैनिक अड्डा खोल दिया है। भारत ने मालदीव से तनाव बढ़ने के कारण उसके पास अपना नया नौ सैनिक अड्डा खोल दिया है। अतीत में भारत के साथ मालदीव के परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंध रहा है, मगर अक्टूबर में नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के चुने जाने के बाद से संबंध बिगड़ गए हैं। और अंत में यह समाचार कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की रेस से अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि हेली ने अपने प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब ये ट्रंप पर निर्भर है कि वो हमारी पार्टी और उससे बाहर उन लोगों के वोट कैसे हासिल करेंगे जो उनका समर्थन नहीं करते हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
मित्रों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईबी से पीड़ित रोगियों की शिकायत पर अमरीकी टैंकर जब्त, जायोनी बस्तियों पर हिजबुल्ला के मिजाइलों की बारिश और एनडीए गठबंधन को विस्तार देने में लगी बीजेपी। दोस्तों, इन विषयों पर कार्यक्रम में समीक्षा और रिपोर्टें पेश की जाएंगी। अमरीकी प्रतिबंधों के कारण उपचार में पैदा होने वाली समस्याओं को लेकर एक दुर्लभ त्वचा रोग से पीड़ितों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं सैयद मीसम।
ईरान की एक अदालत के आदेश के बाद अमरीकी तेल ले जाने वाले एक टैंकर को आधिकारिक रूप से जब्त कर लिया गया है। अमरीकी तेल कार्गो फारस की खाड़ी में मार्शल आइलैंड्स फ्लैग वाले जहाज एडवांटेज स्वीट द्वारा ढोया जा रहा था। अप्रैल 2023 में एक ईरानी बोट से टकराने के बाद ईरान ने इस तेल टैंकर को रोक लिया था। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस तेल कार्गो को ईरान की एक अदालत के आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है, जिसने एपिड मोरेसिस बुलोसा ईबी से पीड़ित रोगियों या बटरफ्लाई रोगियों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। एक दुर्लभ त्वचा रोग से पीड़ित रोगियों ने अमरीकी प्रतिबंधों द्वारा उपचार में होने वाली समस्याओं को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी शिकायत में ईबी रोगियों ने अमरीकी प्रतिबंधों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की थी। शिकायत में रोगियों ने कहा था कि पश्चिमी प्रतिबंधों, विशेष रूप से अमरीका के गैर कानूनी और एकपक्षीय प्रतिबंधों ने स्वीडिश कंपनी द्वारा ईरान को दवाएं बेचने से रोक दिया है, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंच रहा है। हालिया वर्षों में इस्लामी गणतंत्र ईरान के अधिकारियों ने ईरान में कुछ रोगियों सहित लोगों के स्वास्थ्य पर अमरीकी प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में बार बार चेतावनी दी है और इस बात पर जोर दिया है कि ये प्रतिबंध प्रतिदिन रोगियों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमरीका का दावा है कि यह दवा कभी भी प्रतिबंध सूची में नहीं थी। फारस की खाड़ी में एक अमरीकी तेल कार्गो की जब्ती की घोषणा के जवाब में अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों में कभी भी दवा शामिल नहीं थी और अब भी नहीं है। इस बीच बैंकों पर प्रतिबंध और ईरान के मौद्रिक विनिमय में पैदा हुई समस्याओं ने विशेष और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए दवा प्राप्त करना कठिन और कुछ मामलों में असंभव बना दिया है। इन प्रतिबंधों का परिणाम ईरान में बटरफ्लाई रोगियों के साथ साथ थैलेसीमिया और कैंसर से पीड़ित हजारों रोगियों के जीवन के लिए खतरा है। दरअसल अमरीका के इस दावे के बावजूद कि चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कई बैंक, संस्थान और कंपनियां संभावित दंड के डर से ईरान के साथ व्यापार करने से बचते हैं। स्वीडिश कंपनी मेलनिके ने अमरीकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में ईबी रोगियों के लिए चिकित्सा पट्टियां भेजने से इनकार कर दिया है। इस बीच ईरान में लगभग 1200 ईबी रोगियों को तत्काल इन चिकित्सा पट्टियों की आवश्यकता है।
ज़ायोनी मीडिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि सैनिकों के एकत्रित होने के स्थानों पर हिजबुल्ला ने भयानक हमले किए हैं। हसन अजीमजादे की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं साथी अहमद अब्बास।
حزب اللہ نے زائنی شاسن کی سامرک بستی کریات شمونا پر دو کٹیوشا راکٹوں اور گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا. عفیفیم اور کچھ دوسری زائنی بستیوں پر بھی حزب اللہ نے حملہ کیا. یہ حملہ لبنان کے آواسی کھیتروں پر زائنی شاسن کے حملوں کے جواب میں کیا گیا. اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا کہ یہ 2006 میں ہونے والے 33 دیوسیہ یدھ کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا. دکشن لبنان سے ان زائنی بستیوں پر 100 سے زیادہ راکٹ اور میزائل فائر کیے گئے. زائنی میڈیا کے رپورٹر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ 7 اکتوبر جیسا حملہ اب اتری علاقوں میں ہو جائے. یہاں سرکشا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی کھڑ حزب اللہ کے میزائل آ کر گرتے ہیں. حزب اللہ نے اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے زائنی سینکوں کے ایکترت ہونے کی 4 جگہوں پر حملے کیے. تیہات ٹیلے پر زائنی سینا کے 2 میرکاوا ٹینک بھی حزب اللہ کا نشانہ بن کر دھوست ہو گئے. شبعا اور کفر شعبہ میں بھی زائنی سیناؤں کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے راکٹ گرے. حزب اللہ نے اپنے ان راکٹ اور میزائل حملوں میں زائنی سینا کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور کئی ستھانوں پر ان کے جاسوسی کے یتروں کو پوری طرح سے ناکارا بنا دیا. حملوں کا یہ سلسلہ جاری ہے.
مرت علینا یہ مقتیر عصیب.
دکشنی لبنان کے ایک ناگرک نے بہادری کا پریچے دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقوں پر زائنی سینا کے حملے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے علاقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. دکشنی لبنان کے 8 علاقوں پر زائنی سینا کے یدھک ویمانوں نے حملے کیے. ہولا پر اس بمباری میں ایک ہی پریوار کے 3 لوگ شہید ہو گئے. ایک انیہ حملے میں 4 لوگ گھائل ہو گئے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ دکشنی لبنان کے آواسی علاقوں پر زائنی سینا کے حملوں کے جواب میں مقبوضہ اتری فلسطین کے علاقوں میں زائنی بستیوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان جوابی حملوں کا دائرہ لگاتار بڑھتا جائے گا. سیماورتی علاقے خیام سے آئی آر آئی بی کے لیے حسن عظیم زادے کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
اور شوتاؤ اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا. این ڈی اے گٹھ بندھن میں بی جے ڈی کی واپسی کو بی جے پی اور بی جے ڈی دونوں کے ہی لیے فائدے کا سودا بتایا جا رہا ہے. اس بارے میں نئی دلی سے پیش ہے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی کی رپورٹ.
آگامی لوک سبھا چناؤ کے لیے بھاجپا نے ایک بار پھر مودی سرکار کے نعرے کے ساتھ اپنے لیے 370 اور راشٹریہ جنتانترک گٹھ بندھن کے لیے 400 سیٹوں کا لکش رکھا ہے. اسی دشا میں بھاجپا این ڈی اے میں اپنے سہیوگیوں کی سنکھیا بڑھانے میں جٹی ہے. اتر پردیش میں آر ایل ڈی اور سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کو این ڈی اے کے دائرے میں لانے کے بعد بھاجپا اب اپنے پرانے سہیوگی اڑیسہ کے ستاداری بیجو جنتا دل کو این ڈی اے میں لانے کا پریاس کر رہی ہے. 15 سال پہلے ایک دوسرے سے جدا ہوئے ان دونوں دلوں میں نکٹتا اس سمے دکھائی دی جب پردھان منتری نریندر مودی نے اپنی اڑیسہ یاترا کے دوران مکھیہ منتری اور بیجو جنتا دل پرمکھ نوین پٹنائک کی پرشنسا کی تھی. نوین پٹنائک نے بھی کہا تھا کہ مودی نے بھارت کو آرتھک مہا شکتی بنانے کے لیے راستہ طے کر دیا ہے. یدیپی 2009 کے چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی نے بھاجپا سے گٹھ بندھن توڑ دیا تھا لیکن کیندر میں بی جے ڈی نے کئی ضروری مدوں جیسے ناگرکتا سنشودھن ادھینیم، جی ایس ٹی، سرجیکل اسٹرائک، نوٹ بندی، دلی ادھیادیش اور ون نیشن ون الیکشن پر ہمیشہ سرکار کے پکش میں متدان کیا تھا۔ حال کے راجیہ سبھا چناؤ میں بی جے ڈی نے بھاجپا کی امیدوار اشونی ویشنو کو سمرتھن دیا تھا۔ ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ گٹھ بندھن دونوں ہی پارٹیوں کے لیے منافع کا سودا ہے، کیونکہ کیندر میں بھاجپا تیسری بار ستہ میں لوٹنے کا پریاس کر رہی ہے، جبکہ بی جے ڈی بھی اڑیسہ میں چھٹی بار سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر بہار میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر پینچ پھنستا نظر آ رہا ہے۔ این ڈی اے کے لیے 2019 چناؤ کی طرح 2024 میں سیٹوں کا بٹوارا آسان نہیں ہے۔ بہار کے کل 40 لوک سبھا سیٹوں میں بھاجپا اور جنتا دل یو نے 17-17 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے اور 6 سیٹیں لوجپا کو دی تھیں۔ اب لوجپا کے 2 گٹ ہیں اور جیتن رام مانجھی کا ہندوستان عوامی مورچہ اور اپیندر کشواہا کی بھی اپنی پارٹی ہے جو این ڈی اے میں شامل ہے۔ بھاجپا کو انہیں بھی سنتشٹ کرنا ہوگا۔ اسی بیچ انڈیا گٹھ بندھن نے سیٹوں کو لے کر این ڈی اے میں چل رہی کھینچ تان کے بیچ سوتروں کے انوسار لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس پاسوان کے پرمکھ چراغ پاسوان کو بہار میں 8 اور اتر پردیش میں 2 لوک سبھا سیٹوں کی پیشکش کی ہے۔ مودی سرکار کو ہٹانے کے ادیش سے بنائے گئے وپکشی انڈیا گٹھ بندھن کو بھی ابھی سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر ماتھا پچی کرنا پڑ سکتی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم سنا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ان کارکرموں کو آپ اپنی سویدھا کے انوسار ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، parstoday.ir/hi۔ دوستو، ان کارکرموں کے بارے میں یدی آپ اپنی کوئی پرتکریا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ای میل آئی ڈی نوٹ کر سکتے ہیں، hindi@ws.irib.ir۔ تو دوستو، ہماری آج کی اس سبھا میں 2 ساپتاہک کارکرم پیش کیے جائیں گے، آج کی بات اور ایران شتابدی کے جھروکھے میں۔ تو پہلے پیش ہے ساپتاہک کارکرم آج کی بات۔
آج کی بات، شروتاؤ، کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں احمد عباس۔ کارکرم میں آج ہم بات کریں گے بھارت کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جس میں اس نے رشوت کے معاملے میں سانسدوں اور ودھائکوں کی امیونٹی سماپت کر دی ہے۔ بھارت میں سپریم کورٹ نے 1998 کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو پلٹتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جو سانسد یا ودھائک ووٹ اور اسپیچ کے بدلے میں رشوت لینے کے معاملے میں آروپی پائے جائیں گے، ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندر چون کی ادھیکشتا والی بینچ نے سپریم کورٹ کے 1998 کے فیصلے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے ملنے والی یہ چھوٹ خطرناک ہے، اگر اس فیصلے پر پنروچار نہ کیا گیا تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔
By recognizing the jurisdiction of the court to prosecute a member of the legislature who is alleged to have indulged in an act of bribery. 11. The offense of bribery is agnostic to the performance of the agreed action and crystallizes on the exchange of illegal gratification. It does not matter whether the vote is cast in the agreed direction or if the vote is cast at all. The offense of bribery is complete at the point in time when the legislator accepts the bribe.
Mm-hmm.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सांसदों और विधायकों को हासिल संवैधानिक इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी, जो सदन में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के आरोपी पाए गए हों। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। पीवी नरसिम्हा राव के 26 साल पुराने मामले को पलट दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि एमपी और एमएलएज रिश्वत के मामले में संवैधानिक इम्यूनिटी का दावा कर सकते हैं संविधान के आर्टिकल 105(2) और 194(2) के तहत। वर्ष 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन पर आरोप लगा कि उन्होंने राज्यसभा में वोट देने के लिए रिश्वत ली, तो उन्होंने आर्टिकल 194(2) के तहत इम्यूनिटी का दावा कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई अक्टूबर 2023 में की थी, जिसका आज फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में अदालत के फैसले ने असेंबली के सदस्य को रिश्वत लेकर सदन में भाषण देने या वोट देने के मामले में इम्यूनिटी दे दी, जिसका जनहित पर और संसदीय लोकतंत्र पर बुरा असर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी सदन के सदस्य का रिश्वत लेना और भ्रष्टाचार करना भारत की संसदीय डेमोक्रेसी की बुनियादों को मिटा रहा है, ये संविधान की उमंगों के मार्ग में विघ्न डालने वाला है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले के जरिए एक नई दिशा दिखाई।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात।
पत्रकार सुनील प्रभु, जो इस पूरी घटना को कवर कर रहे थे, उन्होंने इस फैसले के प्रभाव और नतीजों के बारे में कुछ बातें बताई।
In the fact that the 7 judge bench was overruling it, that was something that was expected. What is important to note is that they've ruled that just like for the president election, just as it is for the vice president election, in the Rajya Sabha election also, there can be no bribery that takes place. So those MLAs who are being bribed and voting in a particular manner, they can also be prosecuted. And I think that's the underlining provision, that's the big point today, because as the Chief Justice of India himself, speaking on behalf of the 7 judges, say that taking a bribe by a legislature goes against Indian parliamentary democracy, and that itself is an essence.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया ये महान निर्णय, जो राजनीति को साफ सुथरा बनाएगा और व्यवस्था में लोगों की आस्था को मजबूत करेगा। इस फैसले का व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। व्यापक रूप से स्वागत इसलिए भी किया जा रहा है कि इससे बहुत से मामले सुलझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फैसले की तारीफ की, लेकिन भाजपा पर इस समय सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे देकर और सांसदों और विधायकों को डराकर उनके वोट हासिल कर रही है। विपक्षी पार्टियों का इस बारे में आरोप बार बार सामने आया है। राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील भाटी ने इस फैसले के बारे में बात करते हुए भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए।
वी वेलकम दिस काइंड ऑफ डिसीजंस वेयर ब्राइबरी इज इन्वॉल्व और करप्शन इज इन्वॉल्व, वी ऑलवेज वेलकम दिस डिसीजंस। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव द गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट लाइक दैट, वेयर एवरी अपोजिशन पार्टी मेंबर इज बीइंग फ्रेम्ड इन डिफरेंट केसेस, देन देयर हैज टू बी सम some path or middle path by the government or some instruction by the Honorable Supreme Court regarding framing some opposition leaders. So that has to be also taken care of. We sincerely support any action taken against any corruption issues or issues related that what we have seen in the electoral bond case also, where government has decided to bring that kind of bond where...
सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य वकील अश्विनी उपाध्याय ने फैसले को बड़ा ऐतिहासिक फैसला करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया, जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा।
भारत के वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताया और अपने शो में कहा कि इसका अच्छा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा।
ये फैसला साफ तौर पे ये कहता है कि माननीय जो हमारे हैं वो सदन में घूस लेने नहीं जाते, माननीय जो है वो घूस लेकर पलटने के लिए नहीं है, जो हमारे माननीय है वो घूस लेकर किसी का इंटरेस्ट सर्व नहीं कर सकते। 1998 के जज एक तरीके से जो एक इम्यूनिटी दी गई थी उसको हटा लिया गया है। यह बड़ा उचित फैसला है, बड़ा मौजू फैसला है। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो ये व्यवस्था बनाई गई थी उसमें जो सांसदों को जो इम्यूनिटी मिली हुई थी हाउस में, वो इसलिए दी गई थी कि आप फ्री और फेयर तरीके से, फियरलेस तरीके से अपनी बातों को रख सके, जनता के सवालों को उठा सके, कोई ऐसा भ्रष्टाचार हो जो आपको दिख रहा हो, जिसके बहुत सबूत नहीं हो, लेकिन आप सरकार के सामने लाना चाहते हैं ताकि सरकार उस पर कार्रवाई कर सके। ये सरकार का काम है कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, ये सरकार का काम है कि कोई इन्वेस्टिगेशन, जो कहीं गड़बड़ी की बू आ रही है तो इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगे कि ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सांसद इसको उठा सकते हैं, अगर ये बाहर उठाते हैं तो उनपे कानूनी कार्रवाई का डर होता है, अगर वो सदन के अंदर उठाएंगे तो वो कानूनी कार्रवाई से परे होगा, कानूनी कार्रवाई उसकी जद में नहीं आएगा। ये किया गया था इसलिए, लेकिन जो जो हुआ 1998 के बाद, इसलिए इसको रिविजिट करना जरूरी था। 1998 में जो फैसला आया, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चली, जेएमएम ने बेल आउट किया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को और सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए उन्होंने पैसे ले लिए, कुछ नेताओं ने तो अपने अकाउंट में पैसे ले लिए, तो वो क्विड प्रो को था बिल्कुल कि आपने पैसे लिए और आपने वोट दिया, वो सरकार चली। जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि ये चूंकि हाउस के अंदर हुआ है तो 5 जजों के फैसले ने उसको, उस इम्यूनिटी को बरकरार रखा, ये कहा कि हाउस के अंदर हुआ, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये जजमेंट जो है वो 3-2 था, 5 जजों के बेंच में भी 2 जज ऐसा नहीं चाहते।
सुकेश कई मिसालें देते हुए बताते हैं कि किस तरह विधायक और सांसद इस इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए खुलकर धांधली कर रहे हैं।
जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी तो उस समय न्यूक्लियर डील पे लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जमकर पैसे का खेल हुआ, सांसदों ने सदन में पैसे रख दिए, ये पैसे दिए जा रहे हैं, किसी सांसद का कुछ नहीं हुआ। ये पब्लिक डोमेन में था कि पैसे दिए गए हैं लोगों को, लेकिन किसी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार भी बच गई। ये रोग आगे लगा, अब हालिया कुछ मामले पे आ जाते हैं, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया लोगों ने। 43 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को है हिमाचल में, उनके राज्यसभा के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंह भी थे, उनसे बहुत कम विधायक बीजेपी के पास थे, बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। अभी यूपी में बीजेपी के पास नंबर्स जो थे वो 7 सांसद जिताने के थे, सपा के पास 3 सांसद जिताने के थे, मतलब अगर उसके सहयोगी उसको वोट कर देते तो 3 जीत जाते। वो बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीत गया, सपा के कई विधायकों ने ओपनली वोट कर दिया उनको। बिहार में अभी सरकार बनी है नई, अपोजिशन बेंच में बैठने वाले कई लोग जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी वो सत्ता पक्ष में बैठे थे, उसके बाद एक एक करके कभी आरजेडी के कभी कांग्रेस के विधायक वो बीजेपी के पक्ष में चले जा रहे हैं।
इस प्रकार के फैसलों का भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा, जबकि इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इन मामलों में जनता और आम मतदाता जागरूक बने और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के कामकाज और चरित्र पर नजर रखे। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। ईरान शताब्दी के झरोके में दोस्तों, कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बता चुके हैं कि भविष्य में विश्व युद्धों को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए लीग ऑफ नेशंस का संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थान लिया। 25 अप्रैल 1945 को 50 देश एक सम्मेलन के लिए सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एकत्रित हुए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया, जिसे 25 जून 1945 को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही साथ उसके 6 प्रमुख अंगों की भी स्थापना की गई, उसी में से एक सुरक्षा परिषद की स्थापना थी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही डॉक्टर मुसद्दिक ने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय एक स्वतंत्र और आजाद राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। मैं चाहूंगा कि आप इस तथ्य पर ध्यान दें कि हमारा आपसे अनुरोध है कि आप संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के आधार पर इस मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेल एक मूल्यवान सामग्री है, लेकिन वर्ष 1908 में ईरान में इसकी खोज होने के बाद से ये एक परेशानी भरा मुद्दा बन गया। फतेह अली शाह काजार ने पहले एक अंग्रेज पूंजीपति विलियम नॉक्स डॉर्सी को तेल की खोज, निष्कर्षण और दोहन का विशेषाधिकार दिया था, ताकि उनकी कंपनी सरकार को सालाना एक छोटी राशि का भुगतान करेगी। वहीं 1933 में रजा शाह ने इस कंपनी के साथ एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसे ईरान और ब्रिटेन ऑयल कंपनी के रूप में जाना जाता था, जिसमें हालांकि तेल की बिक्री में ईरान की हिस्सेदारी का प्रतिशत बढ़ गया था, लेकिन उसके बदले में ब्रिटिश पक्ष को अन्य रियायतें दी गईं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध का 60 साल का विस्तार था। इस अनुबंध का राजनेताओं और लोगों ने विरोध किया, लेकिन रजा शाह की तानाशाही ने उन्हें अपनी राय और विरोध व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत राजनेताओं ने उत्तरी ईरान के तेल के दोहन के लिए रियायतें प्राप्त करने की शर्त पर ईरान के कब्जे को समाप्त कर दिया, तो सरकार सोवियत संघ के साथ एक संयुक्त तेल कंपनी के निर्माण पर सहमत हुई, लेकिन इसकी अंतिम मंजूरी को नेशनल असेंबली द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा उस वक्त तक इसे पास किए जाने पर स्थगित कर दिया गया था। जब सोवियत सेनाओं ने ईरान छोड़ दिया तो संसद ने न केवल इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, بلکہ سرکار سے دکشنی ایران میں برٹش ایرانی تیل کمپنی میں ایران کے ہتوں کو پوری طرح سے سرکشت کرنے کے لیے بھی کہا۔ دونوں پکشوں کے بیچ بات چیت سے گیس گل شایان نامک اترکت انوبندھ کا نشکرش نکالا گیا، جسے پچھلے انوبندھ کی تلنا میں چھوٹے اور اپریاپت پریورتنوں کے کارن سانسدوں نے خارج کر دیا۔ اس سمے تیل ادیوگ کی استھتی دیش کا سب سے مہتوپورن مدعا بن گئی تھی، اور 16ویں سنسد کے کام کی شروعات کے ساتھ ہی جہاں کئی سوتنتر اور راشٹروادی پرتینیدھیوں نے پرویش کیا تھا، اس کھیتر میں مہتوپورن وکاس کی امیدیں کی جا رہی تھی۔ سنسد کے باہر بھی لوگ اور کئی دل اسی طرح کی امید کے ساتھ یہ سوچ رہے تھے کہ تیل ادیوگ کا صحیح استعمال دیش کے وکاس کی دشا میں ہی ہو۔ ایسی استھتی میں آیت اللہ سید ابو القاسم کاشانی، ایک سنگھرشیل اور اپنیویش واد ویرودھی مولوی اور ایران کے تیل پر برٹش شاسن کے نینترن کے کٹر ویرودھی تھے، جو 1329 میں نرواسن سے وطن لوٹے تھے۔ ایرانی جنتا نے ان کا بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ بھو سواگت کیا۔ اس بیچ تتکالین پردھان منتری لیفٹیننٹ جنرل رزمارا کو تیل ادیوگ کے راشٹری کرن میں سب سے مہتوپورن بادھا مانا گیا تھا، لیکن جب انہیں دیش سے غداری کرنے کے آروپ پہ اسلامک سموہ جمعیت فدائیان اسلام کے ایک سدسیہ نے موت کے گھاٹ اتار ڈالا، ان کی موت کے بعد تیل ادیوگ کے راشٹری کرن کے مارگ میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کا راستہ کھل گیا۔ اس گھٹنا کے ترنت بعد نیشنل اسمبلی نے تیل ادیوگ قانون کے راشٹری کرن کو منظوری دے دی، اور 20 مارچ 1951 کو یہ سینیٹ کی انتم منظوری کے لیے پہنچ گیا۔ اس گھٹنا کو اپنیویش واد کے خلاف ایرانی راشٹر کے سنگھرش میں ایک مہتوپورن موڑ کے روپ میں درج کیا گیا۔ اس قانون کے انوسار ایران کے سبھی حصوں میں تیل کی کھوج، اس کو نکالنے اور اس کے وترن کا کاریہ کیول ایرانی سرکار کی ہی ذمہ داری ہوگی۔ لگ بھگ ایک مہینے بعد ڈاکٹر مسمد مصدق، جو نیشنل اسمبلی میں تیل ادیوگ کے راشٹری کرن کے سمرتھکوں کے نیتا تھے، انہیں پردھان منتری پد سونپا گیا تاکہ وہ اس قانون کا لاگو کرن کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دکشنی ایران کے تیل سمردھ کھیتروں میں جانے اور برٹشوں سے تیل ادیوگ کا پربندھن اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایک پرتندھی منڈل نیوکت کیا۔ دوستو، برٹش سرکار جسے دوتی وشو یدھ سے بہت نقصان ہوا تھا، اور اس دوران اس نے اپنے سب سے بڑے اپنیویش بھارت کے سنسادھنوں کو بھی کھو دیا تھا، اب برٹین کو اپنے دیش کے پنر نرمان کے لیے ایرانی تیل آئے کی بڑی آوشکتا تھی۔ اس لیے اس نے ایران کے تیل ادیوگ کے راشٹری کرن قانون کو رد کرنے کے لیے کئی راجنیتک، سینیہ، آرتھک ہتھکنڈے اپنائے اور سازشیں رچیں۔ وشیش روپ سے اس لوک پری اور اپنیویش واد ویرودھی کارواہی کو انیہ دیشوں کے لیے ایک ماڈل کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ برٹین نے سب سے پہلے آرتھک پرتندھی منڈل بھیج کر ایران کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا پریاس کیا، ساتھ ہی سرکار نے ایرانی راج نیتاؤں پر دباؤ بنانے کے لیے ایران کے دکشنی تٹ پر کئی یدھ پوت بھیجے، لیکن ایران کے تیل ادیوگ کے راشٹری کرن قانون کے ڈھانچے کے باہر کے پرستاووں کے کارن ایران اور برٹین کے بیچ بات چیت کہیں نہیں پہنچ سکی۔ پریڑام سوروپ لندن نے ایرانی تیل پر پرتبندھ کو ایجنڈے میں رکھا، اور ایرانی تیل خریدنے والے کسی بھی ویکتی اور کمپنی پر مقدمہ چلانے کی دھمکی دی۔ برٹین نے ایران کی سمپتیوں پر بھی روک لگا دی۔ دوسری اور مصدق نے تیل مکت ارتھ ویوستھا کی نیتی اپنائی اور اپنے بجٹ گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے راشٹریہ بانڈ جاری کر دیے۔ تیل کو لے کر ایران اور برٹین کے بیچ ٹکراؤ کا ایک انیہ کھیتر انتراشٹریہ منچ تھا۔ ایران آئل کمپنی اور یونائٹیڈ کنگڈم کے بیچ تیل انوبندھ رد ہونے کے کارن لندن نے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد سے شکایت کی۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں ہی ڈاکٹر مصدق نے تیل ادیوگ کے راشٹری کرن کا مدعا اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تیل ادیوگ کا راشٹری کرن کرنے کا نرڑے یہ ایک سوتنتر اور آزاد راشٹر کی راجنیتک اچھا شکتی کا پریڑام ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس تتھی پر دھیان دیں کہ ہمارا آپ سے انوھ ہے کہ آپ سنیکت راشٹر چارٹر کے پراودھانوں کے آدھار پر اس معاملے میں ہستکشیپ کرنے سے بچیں۔ ڈاکٹر مصدق سرکشا پریشد میں اپستھت ہوئے اور تارکک اور قانونی ترکوں کے ساتھ انہوں نے اس پریشد کے سدسیوں کو آشوست کیا کہ ایران کے تیل ادیوگ کا راشٹری کرن ایک انتراشٹریہ مدعا ہے۔ سرکشا پریشد نے اس مدعے کو ہیگ میں انتراشٹریہ نیالے میں بھیجا، اور ڈاکٹر مصدق نے ایک بار پھر اس عدالت میں ایرانی راشٹر کے ادھیکاروں کا بچاؤ کیا۔ انت میں ہیگ عدالت نے ایران اور برٹین کے بیچ وواد سے نپٹنے کے لیے اپنے ادھیکار کھیتر کی کمی کے پکش میں اور واسطو میں ایران کے پکش میں متدان کیا۔ اس پرکار ایران کی جنتا نے برٹین کی اس ہار اور اپنی جیت کا جشن منایا، اور اپنے راستے پر چلتے رہنے کے لیے درڑھ سنکلپت ہو گئی۔ दोस्तों ये विवाद यहाँ खत्म नहीं हुआ। ब्रिटेन ने अपनी दुश्मनी जारी रखी। इस बीच ईरान के आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। ईरान के तेल प्रतिबंध के कारण आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा अदालत और सेना ने हस्तक्षेप किया और सरकार के काम में बाधा डाली। 17वीं संसद के चुनावों में गड़बड़ी और यहां तक की झड़पें हुई, जिसके कारण कुछ शहरों में चुनाव रोकना पड़ा। वर्ष 1952 में संसद के गठन के बाद मुसद्दिक ने अपनी शक्तियां बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बेहतर प्रगति के लिए युद्ध मंत्रालय उन्हें सौंपने के मोहम्मद रजा शाह से उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और परिणामस्वरूप डॉक्टर मुसद्दिक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अयतुल्ला काशानी के नेतृत्व में लोगों ने 21 जुलाई 1952 को एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन करके मुसद्दिक का समर्थन किया और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करने की मांग की। इस प्रदर्शन का गला घोंट दिया गया। सुरक्षा बलों की कार्यवाही में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए। लोगों के गुस्से से चिंतित शाह ने एक बार फिर मोहम्मद मुसद्दिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें युद्ध मंत्रालय सौंपने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार राष्ट्रीय एवं धार्मिक शक्तियों के सहयोग से एक बार फिर जनता के अधिकारों एवं हितों को सुरक्षित करने का मार्ग साफ हुआ। तेल राष्ट्रीयकरण आंदोलन न केवल ईरान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, बल्कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में अन्य सरकारों और देशों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। यही बात थी कि जिससे ब्रिटेन डरता था, और इसी कारण से वो ईरानी लोगों की इच्छा के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा था, और राजनीतिक क्षेत्र में विफलता के बावजूद उसे तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण आंदोलन का दमन करने की कोशिश करना बंद नहीं की। तो दोस्तों कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए। Thank you.